یہ سلسلہ جاری و ساری ہے سورہ انعام کا. آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا, یہ 122 آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے, وہ شخص جو مردہ ہو جسے ہم نے زندگی بخشی اور اسے ایسا نور دیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے, اس شخص کا ایسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہو اور اس سے نکل ہی نہیں سکے. اسی طرح کفار جو عمل کرتے ہیں ہم نے ان کو آراستہ کر دی ہیں. بڑی زبردست آیت. مردہ کون ہوتا ہے؟ جو بے ایمان ہوتا ہے وہ مردہ کہلاتا ہے, جو ایمان لے آتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. حیات تو ظاہری ایک جیسی دکھتی ہے, مردے کی اور زندہ کی, بے ایمان کی اور با ایمان کی, لیکن جو اس کی فکر و غور و فکر ہوتی ہے وہ بہت الگ ہوتی ہے. اس کی سوچ, اس کی فکر اور ہر چیز بہت الگ ہوتی ہے. اس کا رابطہ خدا بند کریم سے ہوتا ہے. وہ رہتا تو یہاں ہے لیکن اس کو جو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے, جو دل کے کان سے سنتا ہے, وہ بہت الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں لوگوں سے. اس کی جو آنکھیں جو دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے, جس کے دل کے کان کھلے ہوتے ہیں, اس کو جو احساسات ہوتے ہیں وہ بہت جدا ہوتے ہیں, جو لوگوں سے بہت جدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس کو کہا کہ اس کو اللہ نے حیات بخشی, اس کو اللہ نے حیات بخشی اور اس سے اس کو نور عطا کرا جس کے درمیان وہ لوگوں میں چلتا پھرتا. اب وہ نور کیا ہے؟ اس کا علم ہے, اللہ سے علم دے دیتا ہے. تو جس کے درمیان وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے تو اس طریق سے چلتا پھرتا ہے کہ اس کو اللہ اس بات کا فہم دے دیتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. اس کو اللہ فہم دے دیتا ہے. جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہدایت دیتا ہے, تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو نقصانوں سے بچاتا چلا چلتا ہے اور وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے, نقصان سے بچاتا ہوا چلتا ہے. تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے پڑا ہو اس سے نکل ہی نہیں سکے؟ یہ کفار ہوا کرتے ہیں, یہ اندھیروں میں ہوتے ہیں, ان کو اس سے نکل نہیں پاتے وہ لوگ. وہ لوگ اس سے بےحد مجبور ہوتے ہیں اور نہ نکل سکتے ہیں کیونکہ وہ ذلت میں بیٹھے رہتے ہیں. تو جو سچی خوشی ہے وہ نور میں ہے. سچی جو خوشی ہے, جو کہ انسان کا جو لطف ہے, جو کرم ہے, جو اللہ سبحانہ کا کرم ہے, وہ اس کے نور میں ہے. اور ہم سب کو, اور یہ نور آپ کو اور ہم کو کبھی مل ہی نہیں سکتا جب تک ہم قرآن سے منسلک نہیں ہوں. بغیر قرآن کے نور آتا نہیں ہے. کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ, مطلب کہ اس آیت کے بارے میں پوچھا, تو محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے مراد اس کا علم ہے, اور دوسرا اور جو کہ اندھیرے میں پڑا ہے اس سے مراد وہ ہے جو اپنے امام کو نہیں جانتا. جو اپنے امام کو نہیں جانتا وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا اسی آیت کے بارے میں کہ جب اللہ سبحانہ تعالی یہ جو دوسری جو سرکار نے فرمایا, میں آپ سے بعد میں عرض کروں گا کیونکہ یہ دوسری آیت کے بارے میں معذرت چاہتا ہوں. درود پڑھ دیں اللہ صلی اللہ احمد وعلی محمد. 123 آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم فراہم کیے تاکہ وہ اپنے مکر کے جالوں کو پھیلائیں, اور جو مکاریاں کرتے ہیں اس کا نقصان انہی کو ہے لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا, اسی طرح اللہ نے بنائے, جعلنا بنایا اللہ نے, فی کل قریتن, ہر شہر میں, اکابر مجرم, ہاں بڑے بڑے مجرم بنا, یم کرو فی, تاکہ اسے مکر کرتے پھر ہیں. وما یم کرو نا, وہ یم کر جو مکر کرتے ہیں, اللہ بھی انفسیہم, خود اپنے لیے مکر کیا کرتے ہیں. وما یشعرون, لیکن اس کا ان کو شعور نہیں ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ مجرم بنتے ہیں؟ اور یہ بڑے مجرم کی اللہ نے بات کری ہے, بڑے مجرموں کی, اکابر, بڑے مجرم وہ ہیں جو کہ چیف لوگ ہوا کرتے ہیں شہر کے, वो चीफ लोग सरकार के वक्त थे ऐसे चीफ लोग जो कि उन्होंने प्लान बनाए थे मकर किए थे सरकार के खिलाफ कुरान के खिलाफ और इस तरह से मकर ये किया करते थे ताकि वो लोगों को खुद तो रोकते थे अपने आप को लेकिन लोगों को भी रस्ते से रोका करते थे और सोचते थे कि अब हम कामयाब हो गए। वो कामयाब तो नहीं हुए, इस्लाम गवाह हिस्ट्री गवाह कि वो सरकार के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ कामयाब ना हो पाए। खुद लियम करू फिया वमा यम करू ना, लेकिन उनका मकर कुछ नहीं रहा बल्कि अपने ऊपर मकर करके बैठ गए। लेकिन उनको बात इसका शऊर नहीं था कि वो मकर करके बैठे हुए, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा मकर करने वाला। तो ये जो मुजरिम जो मक्कारियां करा करते थे तो इनकी मक्कारियों को अल्लाह सुब्हान व तआला ने आगे बयान करा है, वइजा जाअतुम आयातुन कालू लन नुमिन हत्ता नुत्ता मितलमा उती रसूलुल्लाह अल्लाह आलमु हैथु यजअलु रिसालतु सयसू सय سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون اللہ اکبر۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو وہ کہتے کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ ہمیں وہ چیز نہ مل جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے۔ قریب مجرموں کو خدا کے نزدیک ذلت کا سامنا ہوگا اور وہ اپنی مکاریوں کے سبب سے عذاب شدید میں دوچار ہوں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کا ترجمہ لمبی آیا تھا، بڑا دھیرے سب جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نشانیاں آتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ ہم اس پہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے، لن نومنا حتی یوتا مثلما اوتی رسول اللہ، ہم جب تک ایمان لائیں گے جب تک جو رسول کو نہیں دیا گیا تھا ہمیں نہیں مل جائے، یعنی ہم کو بھی پیغمبری ملنا چاہیے انڈیویجولی۔ اتنے خبیث تھے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، وہ کہاں رکھے اللہ خود جانتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، یہ ہر آدمی سے ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا، جو بڑے مجرم تھے بڑے جو مجرم تھے وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے ان کی ڈیمانڈ ہم کو ہم۔ اور قرآن میں اس کا ایک بار کئی اور بھی ذکر بار بار آیا ہے کہ ان کو کسی مل گئی رسالت ہم کو ملنا تھی۔ یہ اس کو کہتے ہیں تکبر۔ خدا کہتا ہے کہ میں خود جانتا ہوں کہ رسالت کو میں کہاں رکھوں، رسالت کس کو ملتی ہے؟ قلب سلیم کو ملتی ہے، جو پاک دل کو ملتی ہے، جس کے دل میں ایسی وسعت ہو اس کو ملتی ہے رسالت۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میری رسالت کو میں کہاں رکھوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان قریب مجرموں کو خدا کے نزدیک ذلت کا سامنا ہوگا اور وہ اپنی مکاریوں کے سبب سے ان قریب شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ نے مکر کا لفظ استعمال کرا ہے اس میں، پھر مکر کا لفظ، پہلی آیت میں مکر کا لفظ استعمال کرا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس میں بھی کرا ہے۔ یعنی یہ انہی مجرموں کے بارے میں بات کر رہا اللہ جنہوں نے یہ کہا تھا جو بڑے بڑے مجرم بستیوں کے تھے، اور یہ بڑے بڑے مجرم بستیوں کے یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ ہم کو رسالت ملے گی۔ اور یہی تو حسد تھی یزید کی، یزید کی حسد یہی تھی، کہنا لگا نا ہو کہ کوئی رسالت نے، مطلب کہ جو بھی رسالت کا دعویٰ تھا جھوٹا تھا، کہہ رہا تھا وہ، کیونکہ حسد تھی ہمیں ملنا چاہیے۔ اب یہ آیت جو آگے کی آیت ہے بڑی غور و فکر کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا فرما رہا ہے کہ کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور کیسی ہدایت دیتا ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے چلتا پھرتا ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں آگے گفتگو فرماتا ہے، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِيدِ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں छोड़ देना चाहता है उसके सीने को तंगूर घुटा हुआ कर देता है, कोया वह आसमान की तरफ बुलंद हो रहा हो। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर रिस्क को मुसलत कर देता है। अल्लाह तो सुभान ताला जिसको हिदायत करना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको गुमराह करना चाहता है उसके सीने को तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वह आसमान पर चढ़ रहा। इसीलिए अल्लाह का इसी तरह अल्लाह जो ईमान न लाते उनके ऊपर अल्लाह रिस नजासत को डालता है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह बताते हैं कि हिदायत देता कैसे, हिदायत देता है ऐसे कि इंसान के सीने को चौड़ा कर देता है। सीना क्या होता है? सीना मतलब उसके फहम को, उसके कल्ब को, उसकी समझ को वसी कर देता है, इसको हिदायत देना चाहता है। और उसकी तरह से होता है, वो उसकी तरह से होता है, वो इस तरीके से सीने को वसी करता है कि इस्लाम के लिए, वो इस्लाम के लिए उसके कल्ब को वसी कर देता है। मतलब अब जो भी ईमान आ रहा है तो उसको कबूल कर रहा है, जो भी हिदायतें आ रही हैं उस पर अमल कर रहा है वो खुद तो कम कर रहा है, अल्लाह कर रहा है उसके लिए। ये मीजान में कहा गया कि उस अल्लाह करता है उसके लिए अल्लाह करता। आज हम ही पढ़ रहे हैं कुरान, ये हम कर रहे हैं कि अल्लाह करा रहा है भाई, ये हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह करा रहा है, ये अल्लाह करा रहा है, ये खुदा करी का शुक्र है उसकी हिदायत है, वरना हम नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह कहता कि ये मेरी हिदायत होती है कि मैं जिसको अपना रास्ता दिखाना चाहता हूं उसको इस्लाम के लिए उसके दिल को सीने को चौड़ा कर देता हूं, वसी कर देता हूं, ताकि वो आसानी से ईमान को कबूल करे और उस पर अमल भी करे, अमल भी करे। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह कहता कि जिसको चाहता अल्लाह गुमराह करे उसके सीने को तंग और घुटावा कर देता है, तंग और घुटावा, गोया हुआ आसमान पर चढ़ रहा हो। अभी तक आपको समझ में नहीं आता था कि आसमान पे आदमी चढ़ता तो सीना होता कैसे, अब जाके स्पेस समझ में आया कि कैसा, ये अल्लाह तब सुबह ना 1400 साल में लिख दिया था कि ऊपर जाओगे तैसा होने लगेगा, शुरू हो जाएगा, हमको मालूम था, अब समझ में आया यार। तो जो लोग अल्लाह के साथ जो कि ईमान न लाते उनके ऊपर अल्लाह इस तरह से नजासत को डालता है, ये ईमान न लाना है इसमें कुफ्र की, ये अल्लाह सुबह कुफ्फार के लिए खुद खुसूसन फरमा रहा है कि जो कुफ्फार जो मेरे आते वो ईमान न लाते अल्लाह ताला उन पर इस तरीके से उनके सीने को तंग कर देता है, घुटावा। तो सरकार ने इस आयत के बारे में फरमाया, इसी के सीना कैसे छोड़ा करता है अल्लाह सुब्हान ताला, सरकार ने फरमाया कि खुदा बंदे करीम उसके दिल में नूर दाखिल कर देता है जिससे उसका सीना छोड़ा हो जाता है, नूर दाखिल करता है। तो लोगों ने कहा कि सरकार उसकी क्या निशानी है कि उसका सीना वसी हो गया, सरकार ने फरमाया कि उसका दिल आखिरत की तरफ मुड़ जाता है और अपने आप को वो धोखे की दुनिया से अलग कर लेता है और मौत के आने के पहले अपने आप को तैयार कर लेता है, ये उसकी निशानी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुरूद पढ़ें अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कि अल्लाह सुब्हान ताला जब किसी अपने गुलाम के लिए भलाई चाहता है तो उसके दिल में एक नूर पैदा कर देता है और उसके दिल के कानों को खोल देता है और उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसको तकवियत देता है, और अल्लाह जिसके लिए बुराई चाहता है उसके दिल में काला धब्बा पैदा कर देता है अल्लाह, और उसके दिल के कानों को बंद कर देता है और उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देता है जिसको गुमराह करता रहता है। फिर छठे इमाम फिर फरमाते हैं कि दिल जो होता है सीने के अंदर बेकरार रहता है, ऐसा हिलता रहता है, काय के लिए? हक को तलाश करने के लिए, हक को तलाश करने के लिए, और जब उसको हक मिल जाता तो सुकून ना रहता दिल। इसलिए कुफ्फारों के दिल ऐसे परेशान दिखते हैं आप हमेशा, क्योंकि उनको हक मिल नहीं पाता। इसलिए आप देखो किसी कुफ्फार को देखना उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ते हैं। यही बात पांचवी इमाम ने फरमाई, इमाम मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम ने, जब तक के दिल को हक नहीं मिलता है वो ऐसा हलक के नीचे इस तरह से परेशान रहता है, मतलब हिलता है, मतलब, और जब हक मिल जाता है तो सुकून आ जाता। पांचवें उन्होंने ये फरमाया, इसके अंदर लफ्ज आया, आयत जो पढ़ी थी उसमें आया था लफ्ज हरज, दिल के लिए क्या आया था हरज, मैंने अभी आयत पढ़ी थी, हरज पढ़ा था ना मैंने, ज़ैयक़न हरजन का अन्नमा, ज़ैयक़न हरजन, तो मौला ने फरमाया हरज होता क्या है, मतलब के जो कि तंगपन क्या होता है, हर में तंग हो जाना, दिल को तंग हो जाना, तो मौला ने फरमाया कि जो दिल जो तंग होता है, सीना जो तंग हो जाता है, तंग घुटा दो लोग आते ना, तो जो तंग होता है, उन्होंने अपनी ऐसी मुट्ठी को बांध के दिखाया, मौला ने मुट्ठी को बांध के बताया कि जो तंग दिल होता है वो इस तरह मुट्ठी को बांध के बताया कि उसमें ना तो कुछ आ सकती है कोई चीज़, ना उससे बाहर जा सकती है, सख्त, और ऐसा दिल कैसा परेशान दिल होता है, थरथरा हुआ दिल होता है। और आगे फरमाया मासूम ने, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, कि जो निजासत क्या होती है, इसी तरह जो लोग ईमान ना लाते खुदा उन पर निजासत डालता है, रिस्क डालता है, बोले रिस्क जो होता है निजासत होती है वो शक होता है, शक होता है, जो शकूक पैदा होते हैं, अल्लाह ताला हमको भी शकूक से बचाए, तौहीद पे शक होता है, रसालत पे शक होता है, कुरान पे शक होता है, इमामत पे शक होता है, खुसूसन अल्लाह सुब्हान तआला हमको इमामत के शख्स से बचा है, खुसूसन आखिरी जमाने में कहा गया है कि लोग बाग बार इमाम पे शक करना शुरू कर देंगे कि कौन है, क्यों नहीं आए, नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातूब, हालांकि निशानियां सामने जाहिर हो रही हैं अभी, फिर भी शक है, अल्लाह उससे हमको महफूज रखे। वहाजा सिरातु रब्बी का मुस्तकीमा कद फसलनल आयाति लिकौमी यज़क्करून लहुम दारुस सलाम सलाम इंद रब्बिहिम वहुवा वलीहुम बिमा कानू यामलून। तो इन दो आयतों में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है, हमने नसीहत कबूल करने वालों के लिए आयतों को तफसील से बयान कर दिया है, उनके लिए उनके परवरदिगार के यहां सलामती का घर है, और वो जो कुछ अमल किया करते थे उसकी वजह से वो उनका सरपरस्त है। सुभान अल्लाह। वो हाजा सिरातु रब्बी का मुस्तकीमा कद फसलना आयतिल कौमी यद्दकरून, यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने समझ रखने वालों फहम वालों के लिए अपनी आयतों को खोल के बयान कर दिया है। क्या से सिरातु रब्बी का मुस्तकीमा क्या है, अल्लाह का रास्ता कौन सा, कहा ये जो रास्ता है जिसको मैं चाहता हूं हिदायत करूं उसका सीना में बसी कर देता हूं, ये अल्लाह का रास्ता है, ताकि अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे कल्ब को ऐसा कवी कर दे, हमारे कल्ब को ऐसा बना दे कि जो जो कि मुलायम कल्ब हो, हमारे कल्ब को मुलायम कर दे, सख्त न बना देना, मुलायम कल्ब बना दे कि जो आए हम कबूल कर लें, वो तेरा करम है, हमारा नहीं है, हमारी कुछ खासियत नहीं, वो तेरा करम है, तेरा फजल है। लहुम दारुस सलाम इंद रब्बी, उनके लिए उनके परवरदिगार का सलामती का घर है, वो हुआ वली हम, वो उनका सरपरस्त है, क्यों बना सरपरस्त, क्यों दारू सलाम दिया, बीमा कानू या अमलून, जो अमल जो किया करते थे, नेक अमल जो किया करते थे, इसलिए वो कैसे अमल करे, अल्लाह ने करवाया अमल, कैसे करवाया, कल्ब को वसी कर दिया, सीने को वसी कर दिया, उनके लिए उनके परवरदिगार का दारू सलाम है, दारू सलाम सलामती का घर क्या है, जन्नत है, जन्नत जन्नत फिरदौस, जन्नत फिरदौस कि क्या होगा जन्नत फिरदौस में, हमारे सारे ऐब दूर हो चुके होंगे, हमारे ऐब जितने भी ऐब हैं वो दूर हो चुके होंगे, कोई घबराहट नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई परेशानियां नहीं, अल्लाह के क़ुर्ब में बैठे, अल्लाह के क़ुर्ब में बैठे, ये सब कैसे होगा, तकवे से होगा, ईमान से होगा, अमल से होगा, वो भी करीम का फजल होना चाहिए, करीम का फजल होगा तो दारुस्सलाम तक जाएंगे इंशाअल्लाह, और वो हमारा सरप्राइज बनेगा जो हम अमल किया करते थे। लेकिन मीज़ान ने बड़ी खूबसूरत बात करी इस बारे में, मीज़ान ने क्या कहा कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्तदार होते हैं, उनके लिए वो चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो नूर में दाखिल हो जाते हैं, पहले हमने अब मन काना मैं तो आया ना जला लहू नूर नहीं, वो जो नूर जो उनको यहां मिल चुका होता है उनके लिए यहीं से सारी लज्जा शुरू हो चुकी होती है। वो नूर में उनका नफ्स नफ्स मुतमाइना बन चुका होता है। एक तरफ तो ये कहां सख्त दिल जो धूसता है दिल के अंदर सीने के अंदर, और एक नफ्स मुतमाइना में दाखिल हो चुके होते हैं, उनके दिल में सुकून होता है। मुसीबत भी पड़े तो कहते खुदा की तरफ से, रहम भी आया खुदा की तरफ से, और हर चीज पर राजी। ये होते हैं जो कि यहीं से उसके नूर में और अमन में दाखिल हो चुके होते हैं, उनके लिए सब चीज जाहिर हो चुकी होती है। जैसे शुरू में ना अर्ज करी थी ना कि जो मोमिन होता है उसकी दुनिया ही अलग होती है, दिखता है इंसान लेकिन उसकी दुनिया ही अलग होती है, उसका सोच अलग होती है, उसकी फिक्र अलग होती है, उसके एहसास अलग होते हैं, उसके जज्बात अलग होते हैं, उसकी बहुत बहुत आगे होती है। तो वो यहीं से सुकून में आ जाता है, इसीलिए उसके चेहरे पे एक मुतमाइन नफ्स दिखता है। इसलिए आप देखें आयतुल्लाह उसके चेहरे पे सुकून बैठा रहता है। सुकून आपको मालूम कि घर में क्या क्या हो रहा है, सुकून क्यों ना कल्ब मुतमाइन हो, सब अल्लाह की तरफ से, सब चीज परवरदिगार करीम की तरफ से। मुसीबत भी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें कुछ बरकतें हैं, मुसीबत है इसमें कुछ बरकत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह हमें भी इस दर्जे की तरफ लेके जाए। अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखना है, हमको भी लेके जाएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेके जाएगा। जब कुरान पढ़वाएगा सुनवाएगा वो उसकी तरफ से है तो लेके भी जाएगा। अब आगे की आयत अल्लाह सुब्हान व तआला ने कयामत की बातें कर रही है। यौमा यहशुरुहुम जमीया या माशरल जिन्न या माशर जिन्न कद इस्तकसरतुम मिनल इंस व काला औलियाउहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमता बादुना बादन व बलगना بلغنا اجن الذي اجلت لنا قال قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم الله اكبر। अब गहरी बातें हैं, ये रूहानी बातें हैं, इस पे भी गौर करें। कयामत के दिन जो रूहानी बातें होंगी, अल्लाह सुब्हान व तआला कयामत के दिन का जिक्र कर रहा है। वो यौम यहशरहुम जमीया, जब तुम सब जमा किए जाओगे, या माशरल जिन्नी तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहेगा जिनों से, या माशरल जिन्नी कद इस्तकसरतुम मिनल इंस, क्या कहेगा अल्लाह, एक रोए जिन तुमने बहुत इंसानों को ले लिया था, ले लिया था। अब बयान करूंगा कैसे ले लिया था। मिनल जिन मिनल इंस काला ओलिया मिनल इंस से, तो जो उनके ओलिया होंगे रफीक होंगे इंसानों में से वो क्या कहेंगे, काला ओलिया मिनल इंस रब्बनस्तमता बादुना भी बादिन, तो वो कहेंगे जो उनके जो ओलिया जो इंसानों में होंगे वो कहेंगे परवरदिगार हम एक दूसरे से फायदा उठाते रहे, हम एक दूसरे से, हम दोनों पहले तो अल्लाह कहेगा माशरल जिन तुमने बहुत इंसानों को ले लिया, तो जो उनके दोस्त इंसान होंगे वो कहेंगे हम दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे थे परवरदिगार, ऐसा नहीं था कि इन्होंने हमको ले लिया था। रब्बना स्तमता बादुना बादन वो बलगना अजन लजी अजल तना, आगे फरमा हम एक दूसरे से फायदा उठाते रहे और हम इस मुद्दत तक पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मोयन की थी। कहा कौन सी मुद्दत तक पहुंच गए जो मोयन करी थी, वो मुद्दत के जब सबके सब परवरदिगार के सामने हाजिर हो गए कयामत पे, उस मुद्दत तक सब पहुंच गए, तो फिर अल्लाह क्या फरमाएगा, कालू नारो मतवाकुम खालिदीन फीहा इल्ला माशा अल्लाह इन रब्बका हकीमुन अलीम, तो अल्लाह जवाब क्या देगा उन लोगों को, इरशाद होगा तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है जहां हमेशा हमेशा रहना है, मगर जो खुदा चाहे बेशक तुम्हारा परवरदिगार साहिब हिकमत और जानने वाला है। वाज़े हो गया, जब कयामत होगी सब लोग जमा होंगे तो अल्लाह पहले जिन्ना से कहेगा कि तुमने बहुत से इंसानों को ले लिया था, तो जो इंसानों में उनको दोस्तों में कहेंगे परवरदिगार हम एक दूसरे से फायदा उठाया करते थे, यहां तक कि हम इस मंजिल तक पहुंच गए, तो अल्लाह सुब्हान फरमाएगा कि तुम्हारा ठिकाना वो जहन्नम है हमेशा रहोगे, मगर ये जो खुदा चाहे, और खुदा हिकमत वाला और इल्म वाला है। तो इसमें ये क्या है, जिन्नात और इंसान, जो लोग इंसान बद अमल करते हैं वो शैतानों के उलिया रहते हैं, शैतान उनके उलिया होते हैं, उनके सरपरस्त होते हैं, शैतान उनके उलिया बन जाते हैं। एक सरपरस्त तो अल्लाह होता है, वो जो अल्लाह की सरपरस्ती अलग होती है, इमाम की सरपरस्ती अलग होती है, वो काय की होती है, वो अपनों हमको हुक्म देते हैं, वो हमको हुक्म देते हैं, वो इस तरह हमारे सरपरस्त हैं वो, एक सरपरस्ती। लेकिन शैतान की जो सरपरस्ती होती है वो आपस की दोस्ती होती है, आपस की दोस्ती होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएगा जिन्नों को कि तुमने अक्सर इंसानों को अपनी तरफ ले लिया था, वो मतलब अक्सर इंसान उनके बहकावे में आ गए थे, अल्लाह फरमाएगा तो तुझ उनके दोस्त इंसानों के वो कहें परवर दिया, हम एक दूसरे से फायदा उठाया करते थे। तो फायदा क्या होता था, जिन्नात भी फायदा उठाते थे और इंसान भी फायदा उठाते थे। तो अल्लाह कहेगा कि तुम आग में चले जाओ, तुम्हारा हमेशा रहोगे, मगर जो खुदा चाहे आग में चले जाओ आज। तो ये फायदा क्या होता था, फायदा ये होता था कि हम इंसान हैं और हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, हम उसको उसकी लज्जत लेना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशात की, हमारा नफ्स कहता है उसकी लज्जत लो। तो जो जिन्नात जो होते हैं, वह जिन्नों में भी तरीके तरीके जिन होते हैं, एक तो मोमिन जिन भी होता है और जो कुफार जिन है, वो अल्लाह ताला ने उनको ये दिया है कि वो हमारे कानों में फुसफुसाएं, सिर्फ फुसफुसाते हैं, सिर्फ विस्पर्स करते हैं। देखें अल्लाह ने हमको दिए अख्तियार दिए, फ्री विल है हमारी, अल्लाह भी हम पे जबरदस्ती नहीं करता, न जिन्ना शैतान जबरदस्ती करते हैं, अल्लाह अपना रास्ता दिखा देता है और शैतान वसवसा पैदा करते हैं। शैतान जब वसवसा पैदा करते हैं तो जो लोग कमजोर होते हैं वो वसवसे को सुन लेते हैं, तो इस वो वसवसे को सुनते हैं इसलिए ताकि वो लज्जत हासिल करें। ये तो हो गया इंसान का फायदा, जिन्नात का क्या फायदा है? जिन्नात का फायदा ये है कि जिन्नात चाहता है कि उनका मास्टर बन जाए, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं इनका वली बन जाऊं, इन इंसानों का मैं वली बन जाऊं, उसको बड़ा मजा आता है वली बनने में, और वो ख्वाहिशात को भी पूरी करवाता है, जो उसकी अपनी ख्वाहिशात को इंसान जरिए पूरी करवाता है। एक तो वली बन गया और ख्वाहिशात को पूरी करवा रहा है, और देख रहा है कि किस तरह से देख रहा है, तो दोनों फायदा उठाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएगा कि अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, हमेशा रहोगे, मगर ये खुदा जो चाहे। तो इसमें अल्लाह ने थोड़ी सी एक एक्सेप्शन रखा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से दूर रखे। वो कज़ालिका नुवल्ली बादत ज़ालिमीना बादन बिमा कानू यक्सिबून, इसी तरह हम बाज़ ज़ालिमों को एक दूसरे के ऊपर उनके आमाल की वजह से मुसरत कर देते हैं। जब आपके आमाल गलत होंगे तो जालिमीन आप पर मुसलत हो जाएंगे, आप कमजोर है, शैतान आप पे आ जाएगा, आपको लेके जाएगा। इसलिए चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करते रहें और अमलों को मजबूत करें। अमल कब तक मजबूत नहीं होंगे? जब तक अल्लाह की मदद नहीं होगी। अल्लाह कब तक मदद नहीं करेगा? जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे। अमलों को जाया नहीं होने दें। इसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला फिर फरमाएगा क़यामत दिन, या माशल जिन्नी वल इंसी अलम यत्तिकुम रुसुलुम मिनकुम यकस्सून अलैकुम आयाती व यंजुरुकुम लिकाय योमिकुम हाजा कालू शहीदना अला अनफुसीना व गर्रतहुम हयातुद दुनिया व शहीदु अला अनफुसुहिम अन्नहुम कानू काफिरीन। फिर अल्लाह क्या फरमाएगा, ए गुरुहे जिन और इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से पैगंबर नहीं आए थे जो मेरी आयतें तुम्हें सुनाया करते थे और इस दिन के आने के अंजाम से डराया करते थे? कहेंगे हम अपने खिलाफ गवाही देते हैं, उन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, अब खुद अपने खिलाफ गवाही दी कि वो काफिर थे। जब ये सब मंजिलें तय हो जाएंगी, जब अल्लाह कहेगा तुम सब जहन्नम में जाओ, फिर अल्लाह फिर फरमाएगा या माशरल जिन्न व इंस ए गिरोह जिन्स अलम यत्तिकुम रसूलुम मिनकुम यकुसून अलैकुम आयत, तुम में से पैगंबर नहीं आते, तुम में से जो तुमको सुनाया करते थे मेरी आयत। अभी तुम में से पैगंबर नहीं आया से क्या मतलब है? क्या जिनों में पैगंबर आए, क्या इंसानों में पैगंबर आए, क्या है? तो मीज़ान ने कहा है कि अल्लाह ने इसमें यह नहीं कहा कि जिन्नात में से स्पेसिफिकली पैगंबर आए, ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने, तुम में से आए बस। ये नहीं कहा कि जिनों में आए ही आए, ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने, तुम में से, दोनों को नाम लिया लेकिन तुम में से। तो तफसीर में ये है कि पैगंबरात सिर्फ इंसानों में आए लेकिन जिनों तक खबरें पहुंची हैं। अलैकुम आया थी, और वो इस दिन के आने से तुम्हें डराया करते थे पैगंबरान। तो दो बार वो गवाही देंगे अपने खिलाफ, कालू शहीना अला अनफुसीना, वो अपने ऊपर अपने खिलाफ गवाही देंगे, कालू शहीना अला अनफुसीना, अपने ऊपर वो कर रहा था आया तो दुनिया और दुनिया की जिंदगी धोखे में दे दिया है, टालता खाता। और फिर शायद गवाही देंगे, फिर क्या गवाही देंगे, तो शहीद हो अला अनफुसिम अनु अनहुम कानू काफिरीन, फिर अपने ऊपर गवाही देंगे कि वो बेशक काफिर थे, बेशक काफिर थे। ये क्यों होगा? क्योंकि दो बार गवाही देंगे अपने खिलाफ, गवाही इसलिए देंगे कि उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, ख्वाहिशात ने धोखे में डाल रखा था, मालूम सब था। पैगंबर आके चले गए, पैगंबर ने दो बातें सुनाई कि देखो ये हक है और न मानोगे तो अजाब है, का हमको मालूम था। अल्लाह अपनी तरफ से पूरी हुज्जत तमाम कर देगा उस दिन, कोई किसी को अल्लाह के खिलाफ कुछ कहने को मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह का मैंने तुम में से पैगंबर भेजे थे जो तुमको इस दिन के आने से डराते थे, तो वह दो बार गवाही देंगे कि हम अपने खिलाफ थे और कहा हम काफिर भी थे क्योंकि हमको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। या अल्लाह, काश हमारे पर्दे आज उड़ जाए इन बातों में, हम उस दिन नहीं करें जाके, आज हमारे पर्दे उड़ जाएंगे, सरकार आए थे, सरकार हमारे पैगंबर है, तो कुरान की आयतें हक, और हम दुनिया की जिंदगी के धोखे में न पड़े हैं, हमारे लिए मुश्किल है। दालिका अल्लम युकुर रब्बु का मोली का कुरा भी जुल्मिन वो अहलुआ गाफलीन, ये इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को जुल्म के साथ बर्बाद नहीं करता जब तक कि उनके जब उनके बाशिंदे गाफिल हों। अल्लाह कहता कि मैं बस्तियों को बर्बाद नहीं करता जबकि उसके बंदे गाफिल हों। ये कौन सी बस्ती हलाक हो रही है? अल्लाह कहता है बस्ती को हलाक नहीं करता जबकि उसके बंदे गाफिल हो। अल्लाह ताला आदिल है। ये बस्तियां कौन सी हलाक हो रही है? ये बस्ती ऐसा नहीं कि कोई बस्ती अजाब से हलाक हो रही है, ये नहीं है। बस्तियां हलाक इस तरीके से हो रही है कि हमको मालूम भी नहीं पड़ रहा है। जो बस्तियों के लोग दुनिया की जिंदगी में गफलत में है इस तरह हलाक हो रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि आसमान से अजाब आने वाला कोई, इस तरह हलाक हो रहे हैं कि हलाक हो रहे हैं, बस बस घूम रहे हैं, आयते हैं ठीक है, मालूम है दुनिया की जिंदगी धोखे में डाल रहा है। आज हमको वहां पार्टी में जाना है, आज हम मस्जिद नहीं जाएंगे, आज हमको बोर मार रहा है, आज मौलाना क्यों जुम्मे में क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको जरा जरा घूमना फिरना है, इस तरह होते होते दुनिया की जिंदगी में मशगूल रहे, तो इस तरीके से चले गए। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि अल्लाह सुब्हान तआला बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक कि वहां के लोग गाफिल हों। मतलब अल्लाह सुब्हान तआला हुज्जत तमाम करता है अपने रसूल को भेज के आयतें पढ़वाकर, हुज्जत तमाम करता है, जो हुज्जत तमाम हो चुकी है मुसलमानों पर 1400 साल पहले, हुज्जत तमाम अल्लाह तआला कह रहा है जब तुम जो हलाक हो रहे हो, आखिरत तुम्हारी चले गई, ये जब तक हलाक नहीं करेगा जब तक के तुम पे पैगंबर नहीं आ चुका होगा। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है देखो कि तुम्हारा पैगंबर नहीं आया था, कर आया था, वली कुल्ली दर्जातुम मिम्मा अमिलु वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और हर एक के दर्जात उसके अमल की लिहाज से मुकर्रर हैं, और वो लोग जो भी अमल करते हैं अल्लाह उसे गाफिल नहीं है। अब हर इंसान और जिनका अल्लाह ने एक दर्जा मुकर्रर करा है, हर एक का एक दर्जा है, और जो भी अमल करते हैं अल्लाह उसे गाफिल नहीं है, हर शख्स का दर्जा है। कयामत के दिन हसरत का दिन होगा, जो लोग जन्नत में भी जाएंगे वो भी हसरत करेंगे कि हाय मुझे काश इससे बड़ा दर्जा कुछ मिल जाता अगर मैं बेहतर अमल करता। हमको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर अमल बनाने की लगा दें, क्योंकि जिस दिन वो दिन कयामत हसरत का दिन है,
لیکن جو جو حدیثوں میں ہے کہ جو شہداء جو حسرت کریں گے وہ کریں گے ابو الفضل سے, وہ حسرت اچھے اچھے شہداء حسرت کریں گے ابو الفضل کے درجے سے. ہائے وہ درجہ کیوں نہ ملے ابو الفضل کو, ارے جنگ بدر ہو گئی, جنگ حنین ہو گئی, ارے بڑی بڑی جنگیں ہو گئی, لیکن کربلا جیسی جنگ نہ ہوئی کہ جس کے نصر 72 لوگ تھے اور اس کے سپہ سالار ابو الفضل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا, ایسا سپہ سالار بنایا تھا کہ ایک طرف تیسرا کی فوج تھی, ایک طرف ابو الفضل کی فوج تھی. ارے ایسا درجہ اللہ نے دیا, ایسے عمل کروا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آئے با الحوائج, ارے وہ تپتی دھوپ اور وہ ابو الفضل کی جنگ اور ہاتھوں کا شہید ہونا, والحمدللہ رب العالمین.